For those of you that would like to either put on your notes or write in your Bible, I'll give you some information.
और वो लोग आप में से जो कुछ ऐसे नोट्स जो हैं अपनी बाइबलों में रखना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं मैं आपको देना चाहता हूं.
Okay, now this is where the seals fit in the book of Matthew.
मत्ती की अंजील के अंदर कहां पर मोरें जो हैं वो फिट होती हैं.
Okay, so the first seal is deception.
पहली मोर जो है वो गिरावट है.
And that goes from Matthew 24 verses 3 through 5.
तो ये 24वें बाब मत्ती की अंजील 24वें बाब के अंदर उसकी तीसरी आयत से पांचवीं आयत तक ये मोर है. पहली मोर जो है मत्ती की अंजील 24वें बाब की तीसरी आयत से पांचवीं आयत के अंदर आप पाएंगे.
And the second seal is war.
और दूसरी मोर जो है वो जंग है.
And that's Matthew 24 verse 6.
और ये छठी आयत के अंदर पाई जाती है 24 बाब की.
And the third seal
और तीसरी मोर
is famine.
और ये वो कहत है.
And that's Matthew 24 verse 7.
और ये भी सातवीं आयत के अंदर आगे चल के इसी बाब की सातवीं आयत में.
And the fourth seal
और जो चौथी मोर है
that's death
और ये मौत है.
And now in Matthew 24 verse 7
और मत्ती की अंजील के 24वें बाब की 7वीं आयत में
the third seal ended at the word famines
और ये मोर जो है ये खत्म होती है कहत के साथ.
And then so starting in the middle of that verse after the word famines
और ये लफ्ज जो लिखे हुए हैं कि इस कहत के बाद
and then including verse 8
और फिर उसके साथ अगली आयत जो आठवीं है उसके साथ इसका इसमें खत्म होगी.
That's the fourth seal which is death
और ये चौथी मोर जो है ये मौत है यहां पर.
The fifth seal is martyrdom
और पांचवी मोर जो है ये वो शहीद हैं.
And it covers Matthew 24 verse 9 through 14.
और ये मत्ती की अंजील उसके 24वें बाब के 9वीं आयत से 14वीं आयत तक.
The sixth seal is tribulation.
और छठी मोर जो है ये मुसीबत है बड़ी मुसीबत.
And that's Matthew 24 29.
और ये 24 बाब की 24.
Yeah, 24 29 through 31.
29 आयत जो है 29 आयत से ये आगे है 31 आयत तक.
The seventh seal is not shown.
और सातवीं मोर जो है ये बताई नहीं गई दिखाई
नहीं. That's a
mystery. ये भेद है.
Now let's look at what God is doing during this same time.
आइए देखते हैं कि खुदा इस वक्त क्या कर रहा है.
So Book of Revelation.
ये मुकाशवा की किताब.
And we're going to start in chapter 4.
और हम शुरू करते हैं चौथे बाब में से. मुकाशवा चौथा बाब.
We'll start at verse 6.
हम उसकी छठी आयत से पढ़ते हैं.
And before the throne there was a sea of glass like unto crystal. In the midst of the throne, round about the throne, were four beasts full of eyes before and behind.
और उस तख्त के सामने गोया शीशे का समंदर ब्लोर की मानिंद है और तख्त के बीच में मैंने तख्त के गिरदा गिर्द पहा चार जानदार जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं.
And the first beast was like a lion, second beast like a calf, third beast had a face of a man, fourth beast was like a flying eagle.
पहला जानदार बब्बर की मानद है और दूसरा जानदार बछड़े की मानद और तीसरे जानदार का चेहरा इंसान का सा है और चौथा जानदार उड़ते हुए उकाब की मानद है.
And the four beasts had each of them six wings and they were full of eyes within, rest not day and night, saying, Holy, 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 Lord God Almighty, which was and is to come.
और इन चारों जानदारों के छह छह पर हैं और चारों तरफ से अंदर आंखें ही आंखें हैं और रात दिन बगैर आराम किए लिए ये कहते हैं कि कद्दूस कद्दूस खुदावंद खुदा कादर मुतलक जो था जो है जो आने वाला है.
Now as we study in the book of Revelation there are two different beasts mentioned.
हम मुकाशफा की किताब में दो मुख्तलिफ जानवरों को देखते हैं.
Yeah. Sorry, I don't have these in Urdu.
मुझे अफसोस है कि ये उर्दू में नहीं है.
The two beasts of Revelation.
ये मुकाशफा के दो जो जानवर हैं.
The beast in Revelation 13.
जो जानवर 13वें बाब के अंदर है.
The Greek word is Therion.
तो इसका यूनानी जो लफ्ज है वो थीरियन.
And the meaning.
इसके माने ये हैं.
A beast, wild beast, untamed.
और इसके माने ये हैं कि एक जानवर है और वो जानवर जंगली है और untamed. भाई ने बताया जो सधाया नहीं गया जिसको लगाम नहीं डाली गया.
And Brother Branham said, yes, untamed to the gospel.
वो अंजील के लिए untamed है, सधाया नहीं गया.
Yeah. And then the four beasts that we've just read about.
और अभी हमने चौथे जानवर के बारे में पढ़ा है.
That Greek word is zoon.
और उसके लिए यूनानी जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ज़ून.
And it means a living being, an animal or brute beast.
इसका मतलब यह है कि एक ऐसा जानवर जो जिंदा है और ब्रूट बीस्ट है. ब्रूट
dumb animal.
जो बिल्कुल डम सा है, उसको कुछ समझ नहीं है.
So we notice that in Revelation 13 it's a wild beast.
हम 13वें बाब के बीस्ट को देखते हैं कि वो बिल्कुल ऐसे है जैसे सदाया नहीं गया.
So it's telling us what kind of power it is.
तो ये बताती है कि ये किस किस्म की ताकत है.
And then now we're studying about Zoon right now.
हम Zoon के बारे में मुतालिया कर रहे हैं.
Now we saw that this creature had eyes before, behind, and within.
हमने देखा कि इस जानवर की आंखें हैं, पीछे हैं, आगे हैं.
And eyes equal intelligence.
और ये जो आंखें हैं वो ये बयान करती हैं कि किस तरह वो ज़हीन है, कितना वो ज़हीन
है. Genesis 3:5.
और ये पदाइश की किताब तीसरे बाब के अंदर.
For God does know that in the day you eat thereof, then your eyes shall be opened.
और खुदावंद ने कहा कि तुम जब तुम इस फल को खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी.
And the eyes of them both were opened, and they knew they were naked.
उन दोनों की आंखें खुल गईं और उन्होंने जाना कि हम नंगे हैं.
Noah found grace in the eyes of the Lord.
खुदा की नजर में कोई वहां पर फजल नहीं था.
And in the case of Hagar.
और वहां पर हम हाजरा के बारे में देखते हैं.
And when she saw that she had conceived, her mistress was despised in her eyes.
और जब उसने ये देखा कि वो हमला हो गई है और वो लौंडी थी और वो हमला हो गई तो वो उसके सबब से नाराज हुई.
So eyes equal intelligence.
ये आंखें जो हैं ये जहानत को जाहिर करती हैं.
And this beast had eyes before, behind, and within.
इस जानवर की आंखें सामने हैं, पीछे हैं.
So therefore it means it knows what was, what is, and what shall be.
इसका मतलब यह है कि वो आगे भी जानता है और पीछे भी जानता है. सब कुछ, जो कुछ पीछे हुआ वो भी और जो आने वाला वो भी.
Now there are many places in the book of Revelation where these same beasts are mentioned.
इस जानवर के बारे में मुकाशफा की किताब में बहुत सी और जगहों पर पाया गया.
Now they're important because they're tied to the seals.
ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये मोरों के साथ बांधा हुआ है.
So that's why we're staying so long on this subject.
इस मज़मून में हम ज्यादा वक्त लेंगे.
In Revelation chapter 4 we read about them.
हम मुकाशफा चौथे बाब में हम इसको पढ़ते हैं.
In chapter 5
और पांचवें बाब में भी.
In all these verses.
और इन सारी आयत में पांच बाब की छठी, सात, आठवीं, ग्यारहवीं, चौदहवीं.
Around the throne in worship.
और वो उस तख्त के सामने हैं, आगे पीछे हैं.
In chapter 6.
और छठे बाब में.
In these verses.
इन तमाम आयत में.
They're involved in the opening of the seals.
और वो इस जगह भी हैं कि जहां पर मोरे हैं वो खुलेंगी.
In chapter 7, verse 11, they're with the elders at the throne of God.
और हम सातवें बाब की ग्यारहवीं आयत में देखते हैं कि वो उस तख्त पर भी हैं जहां पर बुजुर्ग हैं.
In chapter 14, verse 4,
और 14वें बाब की 4 आयत के अंदर वो एक लाख
144,000 are singing in the presence of these creatures.
और 144,000 के साथ उनकी हुजूरी में वो गा रहे हैं.
In chapter 15 verse 7 they are involved with judgment.
और 15वें बाब की 7वीं आयत में वो एक अदालत के सामने हैं.
In chapter 19
और 19वें बाब में
verse 4 they are again in worship.
और चौथी आयत में वो प्रस्तुत करते हैं.
In chapter 19
और 19वें बाब में उसकी 7वीं और 16वीं आयत तक वो दुल्हन के साथ जमीन पर वापस आते हैं.
And these creatures are not seen anymore.
और इसके बाद ये देखे नहीं जा रहे ये जानवर.
They have finished their work.
उन्होंने अपना काम जो था उसको खत्म कर दिया.
And they were a lion.
वो शेर है.
A calf or ox.
वो एक बैल है.
Yeah, and a man and an eagle.
और उसके बाद इंसान है और फिर उकाब है.
Now let's look at him in chapter 6 just a moment.
आइए छठे बाब को देखते हैं.
In chapter 6 verse 1.
पहली आयत छठे बाब की.
It just says one of the four beasts said, "Come and see."
फिर मैंने देखा कि बर्रा ने.
No, you don't have to read it. Just one of the four beasts said, "Come and see."
फिर मैंने देखा कि बर्रा ने उन 7 मोरों में से एक को खोला और उन चारों जानदारों में से एक की गर्ज की सी ये आवाज सुनी कि आ.
एंड इन वर्स 3 वी सी द सेकंड बीस्ट.
और तीसरी आयत में हम दूसरे जानदार को देखते हैं.
इन वर्स 5 इट सेज द थर्ड बीस्ट.
और पांचवी आयत में हम तीसरे जानवर को देखते
हैं. इन वर्स 7 इट सेज द फोर्थ बीस्ट.
और सातवीं आयत में हम चौथे जानवर को देखते हैं.
सो इफ यू राइट इन योर बाइबल देन वर्स 1 वुड बी लायन.
अगर आप अपनी बाइबल पर लिख सकते हैं तो लिखें कि पहले जो जानदार है वो शेर है.
वर्स 3 इज ऑक्स और calf.
और तीसरी आयत वो बैल है.
एंड वर्स 5 इज मैन.
और पांचवी जो आयत के अंदर है वो एक इंसान है.
एंड वर्स 7 इज ईगल.
और छठी बात जो है वो उकाब है.
बिकॉज़ दैट्स द सीक्वेंस दे आर गिवन इन चैप्टर 4.
और ये उनका एक राज है जो दिया गया है.
सो दे Here, these creatures, one of each is now saying to John, "Come see, come see, come see."
यहाँ पर ये सारे जानदार जो हैं ये कह रहे हैं कि आ और देख. यूहन्ना आ देख.
And they're watching this rider, which we found out was Satan working in the church.
हम उस घोड़सवार को देखते हैं कि जो घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है.
So, what is this creature?
ये कौन है? ये जानदार कौन है?
Let's go to Ezekiel chapter 1.
हम हिस्केल के पहले बाब में इसको देखते हैं.
Starting at verse 4.
चौथी आयत से पढ़ते हैं.
I looked and behold a whirlwind came out of the north.
मैंने नजर की तो क्या देखता हूं कि शमाल से आंधी उठी.
A great cloud and a fire enfolding itself.
एक बड़ी घटा और लिपटी हुई आग और उसके गिर्द रोशनी चमकती थी.
And a brightness was about it out of the midst thereof as the color of amber out of the midst of the fire.
और उसके बीच में से यानी उस आग में से स्कील किए हुए पीतल की सी सूरत जलवागर हुई.
Amber is the color of the spirit of God.
ये जो पीतल है ये खुदा की शबाहत है.
Verse 5.
पांचवीं आयत.
And out of the midst thereof came the likeness of 4 living creatures.
और उसमें से 4 जानदारों की एक शबीह नजर आई.
And this was their appearance. They had the likeness of a man.
और उनकी शक्ल यूं थी कि वो इंसान से मुशाबे थे.
And every one had 4 faces.
और हर एक के 4 चेहरे और 4 पर थे.
Verse 10.
दसवीं आयत.
As for the likeness of their faces.
और उनके चेहरों की मुशाबत यूं थी.
They 4 had the face of a man, the face of a lion. The four had the ox on the left side and the face of the eagle.
और उन चारों का एक एक चेहरा इंसान का एक शेर बब्बर का और उनकी दाहिनी तरफ और उन चारों का एक एक चेहरा सांड का बाईं तरफ और उन चारों का एक एक चेहरा उकाब का था.
Okay, so we have now found our creatures.
हमने अपने इस जानदार को देखा.
We don't know what they are yet.
हमने नहीं हमें मालूम कि ये कौन है.
But we found them.
लेकिन हमने इसको तलाश
And
कर लिया.
Each creature had 4 faces.
हर एक जानदार जो है उसके 4 चेहरे हैं.
So it would be like a face of a maybe a lion here.
शायद उसका चेहरा उकाब की तरह है
an ox off this way,
और दूसरा जो सांड है इस तरफ है
a man on the backside,
और इंसान का चेहरा जो है पीछे
an eagle off on this side,
और जो उकाब का चेहरा है वो इस तरफ है
so it isn't like four separate creatures, it's each creature had four faces.
तो हर एक जानदार के चार चेहरे हैं
Now, I'm not taking the time to go into all the details.
मैं और ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता.
You can do that on your own.
आप अपने तौर पर इसको देख सकते हैं.
In verse 1, Ezekiel said,
पहली आयत में हिजकिय्याह ने कहा,
that he was by the river of Chebar when he saw these things.
तो उसने कहा कि वो नहरे कुबार के किनारे पर था.
And now in chapter 10,
हम दसवें बाब में देखेंगे
verse 15
पंद्रहवीं आयत
and the cherubims were lifted up
और क्रोबी बुलंद हुए
this is the living creature that I saw by the river of Chebar
ये वो जानदार था जो मैंने नहर कबार के पास देखा था
so now we know what these creatures are
अब हम जानते हैं कि ये कैसा जानदार है
they are cherubim
वो क्रोबी है
and It goes on to describe them more in chapter 10 if you want to read about it.
अगर आप इस 10वें बाब को पढ़ें तो आपको और ज्यादा इसका पता चलेगा.
But now that we know what they are, what do they do?
अब हम जान गए कि वो कैसे हैं और वो क्या कर रहे हैं.
So if the normal study would be open your Bible concordance,
अगर आप अपनी आम मुतालिया में उस कंकॉर्डेंस किताब को देखें जहां पर हवाला जात हैं
and then start reading about cherubim.
और फिर आप क्रोबियों के बारे में उस उन हवालों को तलाश करें उस कंकॉर्डेंस के अंदर
and the very first mention is over in Genesis chapter 3
तो सबसे पहले जो आपको हवाला मिलेगा वो पैदाइश की किताब का हवाला मिलेगा क्रोबी के बारे में
and let's pick up at verse 22
तो पहले बाब की उसकी 22वीं आयत को देखते हैं पैदाइश
The Lord God said, Behold, a man has become as one of us to know good and evil. Genesis
3:22. Sorry, ji. और खुदावंद खुदा ने कहा कि देखो इंसान नेकोबाद की पहचान में हम में से एक की मानिंद हो गया
Brother Branham emphasized, notice the man had become, but not the woman.
उसने कहा कि यहाँ भाई ब्रैनम ने कहा कि इंसान हम में से एक ईमानदार हो गया मैन औरत नहीं
Because the woman was deceived. She didn't know good and evil.
क्योंकि औरत जो थी वो बहकाई गई थी उसको बहकाया गया लेकिन आदम को नहीं
Now lest he put forth his hand, take also of the tree of life and eat and live forever. Second half of verse 22.
अब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त से भी कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे
Therefore the Lord God sent him forth from the garden of Eden to till the ground from whence he was taken
इसलिए खुदावंद खुदा ने उसको बागे अदन से बाहर कर दिया ताकि वो उस जमीन की जिसमें से बनाया गया था खेतीबाड़ी करे
So he drove out the man and placed at the east of the garden of Eden cherubims and a flaming sword which turned every way to keep the way of the tree of life
چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو جو چوگرد گھومنے والی شعلہ زن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کریں
Now notice there's two purposes here
غور کریں کہ یہاں دو مقصد ہیں
It says the man is not now to reach out and take a hold of the tree of life
کہ مقصد یہ تھا کہ آدمی جو ہے وہ آگے ہاتھ بڑھا کر اس زندگی کے درخت میں سے کچھ نہ کھائے
So the cherubim and a flaming sword were there that Adam could not now take a hold of the tree of life
تو وہاں پر کروبی تھے اور وہاں پر شعلہ زن تلوار تھی تاکہ انسان ہاتھ اپنا بڑھا کر اس پھل کو نہ لے لے
But their assignment was keep the way of the tree of life
لیکن وہاں پر جو خاص بات یہ تھی کہ اس کو اس زندگی سے کے درخت سے پرے رکھنا
Because further in scripture there is going to be a promise to him that overcometh will I give to eat of the tree of life
کہ آگے اس کے بعد جو وعدہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو غالب آئے اسے میں زندگی کے درخت میں سے کھانے کو دوں گا
So now we find the assignment of the cherubim
ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو کام ان کروبیوں کے لیے ہے
keep the man away until I tell you.
Unka kaam ye tha ke us drakht se unhe pare rakhein jab tak main na bataun.
But don't lose the way.
Lekin wo raah se gumrah na ho jaye.
Because one day man must get back to that tree.
Ek din hoga ke jab wo zindagi ke drakht ke paas aayega insaan.
Yeah, I mean, that, of course, that tree is Christ.
Oh, yes.
Kyunki wo hayat ka drakht Yesu hai.
Okay, so now we know the assignment of the cherubim.
In kerubiyon ka jo kaam tha.
So now the next place we find them is in the book of Exodus.
Hum dusri jagah par Kharuj ki kitab mein payenge.
Chapter 25.
Uske 25ve bab mein.
When they're going to start building the Old Testament tabernacle.
Aur jab wo banana chahte the us khaymaishtama ko.
Now watch our symbolism here.
यहाँ पर हम एक और मुशाबत को पाएंगे।
We'll learn some more about the cherubim.
हम क्रोबियों के बारे में और ज्यादा जान जाएंगे।
Starting in verse 10,
उसकी दसवीं आयत से 25 बाब की दसवीं आयत।
They're going to make the ark.
उन्होंने एक अहद का संदूक बनाया।
Watch your symbolism.
वहाँ पर गौर कीजिए कि क्या मुशाबत है।
And they shall make the ark of shittim wood.
और वो कीकर की लकड़ी
Now, of course, the ark is where they come both for mercy and judgment.
ये जो अहद का संदूक है, ये अदालत और रहम दोनों के लिए बनाया गया.
And of course, on top of the ark is the mercy seat.
क्योंकि उसके ऊपर एक रहमगाह थी.
And of course, Christ is our mercy seat.
क्योंकि मसीह हमारी रहमगाह है.
So now, watch this shadow.
इस साये को देखें जो पहले बयान किया गया।
And thou shalt make the ark of shittim wood.
तू कीकर की लकड़ी का संदूक बनाया।
And wood types humanity.
और ये इंसानियत है, इंसानियत को जाहिर करते।
And thou shalt overlay it with pure gold.
और उसके ऊपर खालिस सोना मंडना।
That's deity.
ये अलूहियत है।
Humanity overlaid with deity.
इंसानियत के ऊपर सोना मन्ना खुदाइयत अलुहियत
That's Jesus Christ.
ये यीशु मसीह है. Amen.
Verse 17.
और उसकी 17वीं आयत.
And thou shalt make a mercy seat of pure gold.
और तू कफारा का सरपोश खालिस सोने का बनाना.
Mercy is all God.
रहम सब खुदा की तरफ से.
Amen. And thou shalt make two cherubims of gold. Verse 18.
और सोने के दो करोबी सरपोश के दोनों सिरों पर.
So yes, now, wait a minute. Now we find the cherubims are actually a part of deity himself.
ये करोबी जो हैं, हकीकत में ये उस अलुहियत का हिस्सा हैं.
And then it says, of beaten work shalt thou make them in the two ends of the mercy seat.
तो which verse is it?
Second half of verse 18.
तो 18वीं आयत का दूसरा हिस्सा है कि दोनों सिरों पर गाढ़ कर बनाना.
Okay, so gold is deity.
यह सोना अलुहियत है.
Beaten gold is the work of God.
जो सोना घड़ा जाता है, पीट कर बनाया जाता है, वो खुदाइयत.
And make one cherubim on the other end. Verse 19.
एक क्रोबी जो है उसका एक हिस्सा.
And the other cherubim on the other end.
और दूसरे क्रोबी का दूसरा हिस्सा.
So now we've got this mercy seat.
यहाँ पर मर्सी अब रहमगाह है.
And who's watching over the mercy seat?
और उस रहमगाह के को कौन देख रहा है?
Cherubim.
क्रोबी जो हैं वहाँ पर.
Who is our mercy seat?
हमारी जो अदालत रहमगाह है कौन है?
Jesus Christ.
यीशु मसीह.
Who is Jesus Christ?
यीशु मसीह कौन है?
He's the tree of life.
वो जिंदगी का दरख्त है.
Amen. So here's the cherubim still protecting the tree of life.
और यहाँ पर जिंदगी के दरख्त को जो क्रोबी हैं वो उसकी हिफाजत कर रहे हैं.
Verse 20.
उसकी बीसवीं आयत.
And the cherubim shall stretch forth their wings on high, covering the mercy seat with their wings, and their faces shall look one toward another. Toward the mercy seat shall the faces of the cherubim be.
और वो क्रोबी इस तरह के ऊपर को अपने पर फैलाए हुए हों और सरपोश को अपने परों से ढांक लें और उनके मुंह आमने सामने सरपोश की तरफ हों.
Verse 22. And there I will meet with thee.
और 22वीं आयत. वहां मैं तुझसे मिला करूंगा.
I will commune with thee from above the mercy seat, from between the two cherubims which are upon the ark of the testimony.
और उस सरपोश के ऊपर से और क्रोबियों के बीच में से जो अहद नामा के संदूक के ऊपर होंगे उन सब अहकाम के बारे में.
Now I'll give you something to think about.
मैं बताना चाहता हूं कि इस पर गौर कीजिए.
Brother Branham did not make it clear.
भाई ब्रैनम ने इसको पूरे तौर पर वाजे नहीं किया.
And neither does the Bible make it clear.
ना ही बाइबल के अंदर कोई ऐसी बात वाजे साफ है.
So this is just something that's hanging in the message.
हम इसको बाइबल मैसेज के साथ मिला रहे हैं.
But I'm not exactly 100% sure we're seeing it right, but maybe we are.
मैं इस बात के लिए 100% तक पूरे तौर पर श्योर नहीं हूँ, यकीन नहीं.
Ezekiel 36 says.
हिस्केल उसके 33वें बाब में 36वें बाब में
स्पीकिंग ऑफ सैतान
वहां पर शैतान के बारे में
Thou art the anointed cherub that covereth
वहां पर लिखा है कि तू मुकर्रब क्रोबी था ममसू क्रोबी था
There's only one covering cherub that we can find and that's these two that are covering the ark
एक ही क्रोबी है जो उस संदूक को ढांपे हुए था
Let me give you an example.
एक मिसाल आपको दें.
Let me see if I have the picture here. Yeah, I do. Now, there was a picture taken in Houston, Texas.
एक तस्वीर है जो ह्यूस्टन टेक्सास के अंदर
And you all
देखी
remember
गई.
The picture.
और अगर आप उस तस्वीर से वाकिफ हों.
Brother Branham is in profile.
भाई ब्रैनम जो थे वो उनकी शक्ल
And the pillar of fire is right here.
और वहां पर एक आग का स्तून है
Yeah, you remember that?
Yeah, that.
They call it the halo picture. Okay. Now, in this picture,
और इस तस्वीर में
Now, how many know the name Sidney Jackson?
कितने लोग सिडनी जैक्सन जो ब्रदर हैं उनका नाम जानते हैं
Okay. Sidney Jackson was a minor prophet from South Africa that Brother Branham loved very much.
तो सिडनी जैक्सन जो है वो एक अफ्रीका से भाई हैं वो बहुत प्यारे भाई हैं भाई ब्रैनम बहुत प्यार करते थे उसको.
And Sidney told me this that Brother Branham told him.
तो सिडनी ने उनको बताया भाई लोनी को बताया कि भाई ब्रैनम ने सिडनी को बताया था.
So let me just show you something.
मैं कुछ बताना चाहता दिखाना चाहता हूँ यहाँ.
He says, Brother Sidney, look at this picture.
उसने कहा कि भाई सिडनी इस तस्वीर को देखिए
Now you have to look a little bit to see this.
आप गौर से देखिए और आप कुछ देख सकेंगे
See this nose,
यहाँ पर
high forehead,
यहाँ पर एक चेहरा है जिसका आंखें हैं
much hair,
यहाँ पर कुछ और बाल हैं
Can you see it?
क्या आप गौर से देख सकते हैं
Here's the nose.
ये नाक है
And there's a darkness for his eyes.
और आंखों के ऊपर जरा स्याही है
Here comes a high forehead.
और फिर ऊपर सर है
And then the hair starts back further
और
back.
फिर यहाँ पर बाल हैं
He says, Brother Sidney, do you see that? It looks like an old American Indian.
तो भाई सिडनी क्या तू देख सकता है कि ये पुराना जो इंडियन है वो है
He says, Brother Sidney, that's my old nature.
तो ये भाई सिडनी मेरी पुरानी फितरत है
He said, my mother was half Indian.
मेरी माँ जो थी वो इंडियन थी
He said, आदि it's always there to haunt you.
और वो मेरा ताकब करती है हमेशा
He said, Brother Sidney,
भाई सिडनी
He says, when you receive the Holy Ghost,
जब तू रूहुल कुद्स पाएगा,
and then he says, watch my hands.
तो मेरे हाथों को देखना.
He said, there's a Holy Ghost fire that comes in to burn that old nature right out of you.
के इस तरीके से वो रूहुल कुद्स की आग जो है मेरी उस पुरानी फितरत को जला डालेगी.
He says, and then his hands went like this.
तो फिर मेरे हाथ इस तरीके से ऊपर उठ के.
No, watch me.
इस तरह वापस.
Back here, right.
इस तरह
So it's burned out of the place of dominion.
तो उस बात को जला डाला जहां पर कोई राज कर रहा था
But it still talks to you.
लेकिन अभी तक भी वो आपको पीछे बात करती है
Trying to convince you he's still in control.
के वो कोशिश करती है कि अभी तक कहे कि तू मेरे कंट्रोल में है
So where's your old nature talking to you?
जब आपके साथ जो आपकी पुरानी इंसानियत बात करती है
right here.
यहां पर
Where was the pillar of fire on the prophet?
तो नबी के कहां पर था वो आग का स्तून
right here.
इस जगह पर
two natures right there talking to you.
दो किस्म की फितरतें यहां पर बात करती हैं पीछे
And thou art the anointed cherub that covereth.
तो तू उस ममसू करोबी से ढांपा गया
You know, in Numbers, we're going to be reading about the Old Testament tabernacle.
हम यहाँ पर पुराने अहदनामे की जो tabernacle है, हैकल है, उसके बारे में सुनेंगे.
This says outer court.
ये बाहर का हिस्सा है.
Holy place or sanctuary.
यहाँ पर जो दूसरा हिस्सा है कि ये मुकद्दस जगह है.
Holy of holies or holiest of all.
और वो जो मकाम है, वो पाक तरीन मुकद्दस मकाम है.
Okay, Old Testament tabernacle.
ये पुराने अहदनामे की जो हैकल है उसका नक्शा
Numbers chapter 2
दूसरा बाब
verse 2
उसकी दूसरी आयत
Every man of the children of Israel shall pitch by his own standard with the ensign of their father's house
बनी इसराइल अपने अपने डेरे और अपने अपने झंडे के पास और अपने अपने आबाई खानदान के इलम के अलम के साथ खैमा इज्तमा के मुकाबिल और उसके गिरदा गिर्द लगाएं
सो अराउंड द टैबरनेकल
इस अहद के संदूक और इस हैकल के दौरान खैमा इज्तमा में
सम मैन वुड कम ओवर हियर एंड ही वुड स्टैंड विद द ट्राइब एम्ब्लम
तो यहां पर कोई शख्स आता है और वो इस बात की कोशिश करता है
एंड देन ऑल ऑफ दैट ट्राइब न्यू दे वर टू पिच देयर टेंट्स देयर
कि वो अपने जो जो छावनियां हैं वहां पर फिट करें
एंड देन अनदर वन ऑन दिस साइड
और फिर एक इस तरफ आता है
अनदर वन ऑन दिस साइड
और दूसरा मशरिक की तरफ और ये चारों मशरिक मगरब शमाल जनूब और तीसरी आयत
एंड ऑन द ईस्ट साइड टुवर्ड द राइजिंग ऑफ द सन शैल दे ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ द कैंप ऑफ जूदा पिच
और तीसरी आयत में लिखा है और जो मशरिक की तरफ जिधर से सूरज निकलता है अपने डेरे अपने दलों के मुताबिक लगाएं
और just as far as I read and stuff
दल लफ्ज होता है
नंबर 10 वर्स 10
और दसवीं आयत
एंड ऑन द साउथ साइड शल बी द स्टैंडर्ड ऑफ द कैंप ऑफ रूबन
और जनूब की तरफ अपने दलों के मुताबिक रूबन की छावनी
वर्स 18
और 18वीं आयत
एंड ऑन द वेस्ट साइड शल बी द स्टैंडर्ड ऑफ द कैंप ऑफ इफ्रेम
और मगरब की तरफ जो है इफ्राइम की छावनी के झंडे के लोग हों
वर्स 25
और 25वीं आयत
द स्टैंडर्ड ऑफ द कैंप ऑफ डैन शल बी ऑन द नॉर्थ साइड
और शमाल की तरफ अपने दलों के मुताबिक दान की छावनी के झंडे के लोग हों
नाउ एज वी लुक एट द ओल्ड टेस्टामेंट टैबरनेकल
जब हम इस पुराने खैमा इज्तिमा को देखते हैं
When we open it up,
जब हम इसको खोलते हैं
we find the cherubim are on this veil right here,
हम यहाँ पर जो पर्दा था उसके पास उस क्रोबियों को देखते हैं
symbolizing keeping the way,
और ये इस बात की मुशाबत है कि वो रास्ता रोके हुए हैं
the cherubim are in on the trim work around the top inside
तो इसके ऊपर जो बड़ा ही थोड़ा सा काम किया हुआ है ट्रिम वर्क है
and the cherubim are right over the mercy seat
तो ये क्रोबी जो थे वो उस रहमगाह के ऊपर थे
yes so this is the holy place
और ये पाक तरीन मकाम है
Seven candlesticks.
यहाँ पर सात जो शमादान हैं.
Table of showbread.
और वहाँ पर रोटियों का मेज है.
And then the cherubim on this curtain.
और इस पर्दे के ऊपर भी वो क्रोबियों की शबाहत है.
On the other side of this curtain is the holy of holies.
और दूसरी तरफ उस पर्दे के पीछे पाक तरीन मकाम है.
And then the priest once a year would go into the holy of holies with blood.
और सरदार काहिन पाक तरीन मकाम में जो बहुत मुकद्दस है वहां पर साल में एक बार जाता है
Now I haven't got anyone to make up cherubim for me that's right up here yet.
मैंने इस क्रोबी की कोई तस्वीर तो नहीं बनाई लेकिन वो यहां पर था
It should show the four faces, not one.
तो उसके चार चेहरे थे एक चेहरा नहीं
And so there's the cherubim again, keeping the way.
और ये क्रोबी रास्ता रोके हुए थे
And then the standards of the tribe of tribes, excuse me.
और जो कबीलों की बात है,
we found that they were to be Ephraim, Reuben, Judah, and Dan.
हम देखते हैं कि इफ्राइम, रूबन और यहूदा.
And we find that their standard is a lion, an ox, a man, and an eagle.
और उनका जो झंडे का निशान था, वो भी ऐसा ही है कि शेर है और उसके हाँ जी चारों जानदारों का है.
Yeah. So therefore, now the tribes themselves represent that they are also guarding the way.
और ये कबीले जो हैं, ये जाहिर करते हैं कि वो इस बात के लिए कि वो भी एक तरह से चौकीदार हैं.
Because God had said, I've chosen you to be a peculiar people among all the nations.
और खुदा ने कहा था उनको कि मैंने तुम्हें चुन लिया था कि कौमों में से तुम खास लोग हो.
If an uncircumcised Gentile tried to walk through the camp and come in here,
अगर कोई नामख्तून शख्स उन खेमों में से गुजरता हुआ ये इस मकाम पर आ जाए,
the children of Israel would not let him in.
तो बनी इसराइल उसको अंदर नहीं आने देते.
Remember, the cherubim have two purposes.
तो क्रोबियों के दो मकसद थे.
Keep out those who are not supposed to come in.
और उनको बाहर रखना जो अंदर नहीं आ सकते.
And preserve the way.
और उनके रास्ता रोकना.
But the
रास्ते को महफूज रखना.
There are those who will come in.
तो फिर एक वक्त आएगा कि जो आएंगे उनके लिए राह हमवार करना.
Amen. Now, in studying both history and the message.
दोनों बातों का मुतालिया, तारीख और मैसेज का, इस वक्त के पैगाम का.
I heard it first in the message.
मैंने पहली मर्तबा मैसेज के अंदर सुना.
And I was actually surprised because I thought it was a revelation from to Brother Branham only.
तो मैंने सोचा और हैरान हुआ कि शायद ये मुकाशफा सिर्फ भाई ब्रैनम के लिए है.
But I found that the old symbols for the four gospels were the lion, the ox, the man, and the eagle.
और फिर मैंने इस बात को पाया कि ये चारों जो जानदार हैं ये अंजील के अंदर हैं.
But here it is. I got this out of a book at the library.
मैंने इसको लाइब्रेरी में से हासिल किया.
It says ancient Christian symbols for the four gospels.
तो जो इब्तदाई मसीही थे उनकी जो उनका निशान जो था वो चार अनाजील थी.
And there's your lion.
यहाँ पर शेर है.
Ox.
और फिर बैल है.
Man.
और
मैं
इंसान है और फिर उकाब है.
So we find then that the four gospels are also assigned the same job.
तो ये चारों अंजीलें जो हैं ये भी वही काम अंजाम दे रही हैं जो चारों जानदार दे रहे हैं.
So then we could also place the four gospels around this.
हम देखते हैं कि ये चारों अंजीलें जो हैं इसके चौगिर्द हैं.
Matthew,
मत्ती,
John,
और यूहन्ना,
Mark,
मरकस,
Luke,
और लुका.
Because they also are represented as the.
ये भी नुमाइंदगी करती हैं हमारी.
Okay, now here's the Matthew, the lion.
यहाँ पर मत्ती को हम देखते हैं कि वो शेर है.
Representing the lion of the tribe of Judah.
मत्ती का ये बयान है कि वो यहूदा के कबीले का शेर को रिप्रेजेंट कर रही है.
So we'll take one example.
हम एक मिसाल के तौर पर देखते हैं.
We're going to come up to Matthew.
हम मत्ती के पास आएंगे.
And say, Matthew, I want to get in here.
और मैं हम कहेंगे कि मत्ती हम अंदर जाना चाहते हैं.
I want access to the presence of God.
मैं खुदा की हुजूरी में जाना चाहता हूँ इस जगह पर.
And I would say, Matthew, how do I get in here?
कि मैं मत्ती किस तरह यहाँ जा सकता हूँ?
And he says, well, just read Matthew 28:19.
तो वो कहेगा कि इस किताब को मेरी जो अंजील है उसको पढ़ो 29 जो 29 बार. हाँ जी
28:19. Yes, sir. It says, Go ye therefore teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost.
तो वहाँ पर जैसे लिखा है कि सब कौमों के पास जाओ और उनको अंजील की मुनादी करो और उनको बाप बेटे और उनके किसके नाम से बपतिस्मा दो.
So I say, it says here, be baptized in the name of Father, Son, and Holy Ghost.
तो यहाँ पर लिखा है 28 बाब की 19 आयत में कि सब कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ और उनको बाप बेटे और उनके किसके नाम से बपतिस्मा.
I say, but Matthew, Peter said over in the book of Acts.
लेकिन मैं मत्ती को कहूँगा कि पत्रस ने मत्ती पत्रस ने तो ये कहा है
that I'm to be baptized in the name of the Lord Jesus Christ.
के मुझे यीशु के नाम से बपतिस्मा मिलना चाहिए.
And Matthew says, oh, now you're beginning to see something.
तो मत्ती मुझे कहेगा कि तुझे कुछ देखना होगा.
So he says, now go to the first of my book.
तो फिर वो कहेगा कि मेरी पहली किताब में चले जाओ.
So let's go to the first of the book.
पहली किताब जो है उसमें चलते हैं.
Matthew chapter 1.
मत्ती की इंजील पहले बाब में.
Matthew chapter 1 starting at verse 18.
तो 18वीं आयत से.
Amen.
18वीं आयत. पहला बाब.
Now Matthew 28:19 said I'm to be baptized in the name of the Father.
तो मत्ती की इंजील 28 बाब 19 आयत में लिखा है कि मुझे बाप बेटे
and the Holy Ghost.
रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा लेना है.
That's what he told me.
ये मुझे बताया गया.
And he says now here's the secret.
और यहां पर एक बड़ा राज है.
Now the birth of Jesus Christ was on this wise when as his mother Mary was espoused to Joseph before they came together she was found with child of the Holy Ghost.
अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुदस की कुदरत से हामला पाई गई.
Now I thought this was his father.
मैं सोचता हूं कि ये उसका बाप था.
But this says the Holy Ghost is his father.
लेकिन ऐसे कहा गया कि ये रूह कुदस उसका बाप है.
I got a question.
यहां पर एक सवाल है.
Verse 19.
19वीं आयत.
Then Joseph, her husband, being a just man and not willing to make her a public example, was minded to put her away privately.
पास उसके शोहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम नहीं करना चाहता था चुपके उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया.
But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream.
और इन बातों की वो सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा आए यूसुफ.
Saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her of the Holy Ghost.
Ay Yusuf, Ibn Daud, apni biwi Maryam ko apne haan le aane se na dar, kyunki jo kuch uske pet mein hai, woh Ruh Al-Quds ki kudrat se hai.
Now we know he doesn't have two fathers.
Hum jante hain ki uske do baap nahin the.
So it must be that the Holy Spirit is the spirit of the Father.
To hum ye jante hain ki रूह कुदस जो है वो बाप उसका है वो बाप का है.
And so they must be one.
तो वो एक हैं.
Amen.
Verse 21.
तो उसकी 21वीं आयत.
And she shall bring forth a son and thou shalt call his name Jesus for he shall save his people from their sins.
और उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा.
Now all this was done that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet saying behold a virgin shall be with child shall bring forth a son and they shall call his name Emmanuel which being interpreted is God with us.
Ye sab kuch isliye ho ke jo khudawand ne nabi ki marfat kaha tha wo pura ho dekho ek kumari hamla hogi aur beta janegi aur uska naam Emmanuel rakhenge.
Amen. Well, I thought this was God. Iska tatma
hai khuda hamare saath hai.
I thought this was God.
मैं ये सोचता हूँ कि ये खुदा है.
And this was the son.
और ये बेटा है.
But the Bible said.
लेकिन बाइबल में ऐसे लिखा है.
The son.
के बेटा.
Is God with us?
खुदा हमारे साथ है.
They must be one.
हमें एक होना है.
So I say Matthew.
मैं मैथ्यू को मत्ती को कहूँगा.
Could it be that the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost is the Lord Jesus Christ?
क्या बाप और बेटे और रूह कुदस का नाम यीशु मसीह नहीं है?
And Matthew says. You've got the right answer.
तो मत्ती कहेगा कि तेरे पास ठीक जवाब है.
Welcome to the tree of life. Come in.
Oh, आ जा खुशामदीद जिंदगी के दरख्त के पास.
Amen.
Amen.
So there's the job of the cherubim.
करूबियों का जो काम है.
How's our time? I'm sorry. Okay, Revelation chapter 6.
तो मुकाशवा छठे बाब में.
Revelation chapter 6.
तो मुकाशवा छठा बाब.
Now we found that it is the lion, the ox, the man and the eagle that in each case says come and see.
हम देखते हैं कि यहां जो चारों जानदार हैं उनका खास काम.
And that when the lion and the ox and the man say come and see.
और जब ये चारों जानदार हैं वो ये कहते हैं कि आ और देख.
We see a horse and a rider and what he does.
हमने देखा कि जो घोड़ा है और घोड़सवार है उन्होंने क्या किया
But we don't know who he is.
लेकिन हम नहीं जानते कि वह कौन है
But when the eagle says, come and see.
लेकिन जब उकाब कहता है कि आ देख
who's the eagle?
ये ईगल कौन है ये उकाब कौन है
That's the prophet.
ये नबी है
Fly high, see afar off.
ओ बहुत बुलंदियों पर रूह में प्रवास करना और बहुत दूर तक देखना
Amen. Now let's see what the eagle has to say.
देखते हैं कि इस उकाब ने क्या कहा है
Verse 7.
उसकी सातवीं आयत
And when he had opened the fourth seal, I heard the voice of the eagle say, Come and see.
और मैंने गोया उन चारों जानदारों के बीच में से ये आवाज आती सुनी
And I looked and behold a pale horse, and his name that sat on him was Death, and hell followed him.
और चौथे जानदार को ये कहते सुना कि मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक जर्द सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मौत है और आलमी अरबा उसके पीछे पीछे हैं।
Who is the rider?
कौन इस घोड़सवार है?
He's death.
मौत।
And then the prophet said.
तब नबी ने कहा।
And I'll tell you his name.
मैं उसका नाम बताना चाहता हूँ।
It's organized religion.
ये वो मज़हब है जिसको तंजीमी शक्ल दी गई।
That's death that's been riding in the church in every age.
के हर जमाने के अंदर ये कलीसिया उस घोड़े के ऊपर सवार है
That's why the call in this age has come out of her, my people.
तो इसलिए इस जमाने को कहा गया कि मेरे लोगों उनमें से निकलाओ
Now, verse 7 we just read.
हमने सातवीं आयत को अभी पढ़ा
And then now in verse 8 again.
और फिर आठवीं आयत दोबारा पढ़ते हैं
I looked and behold a pale horse.
मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक जर्द सा घोड़ा है
and his name that sat on him was death and hell followed him.
और उस सवार का नाम मौत है और आलमी अरबा उसके पीछे पीछे हैं
okay, period.
एक वक्फा है वक्फा है उस सेंटेंस की
That's where we are in time right now.
अब हम इस जगह पर हैं
The eagle has come.
उकाब आया
He's pointed to the pale horse.
और उसने ये बात जाहिर की कि जर्द घोड़ा आएगा
But the pale horse has no power yet.
लेकिन उस जर्द घोड़े के पास कोई ताकत नहीं है
who he is.
और हमें बताया गया कि वो कौन है
He's identified him as death.
और उसको बताया गया कि वो मौत है
But he doesn't get power until the bride is gone.
जब तक दुल्हन चली नहीं जाएगी वो ताकत हासिल नहीं कर सकेगा
Amen.
जर्द घोड़े वाला ताकत हासिल नहीं कर सकेगा
Second Thessalonians.
दूसरा थसलोनीकियों का खत
Chapter 2.
उसका दूसरा बाब
Verse 3.
और उसकी तीसरी आयत दूसरे बाब की तीसरी आयत
Let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition.
किसी तरह से किसी के फरेब में ना आना क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक के पहले बरगश्ती ना हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो
When it says that day shall not come.
लिखा है वो दिन नहीं आएगा
It's referring to the verse above where it's talking about the day of the Lord.
और ये उस आयत की तरफ इशारा है ये खुदावंद की आमद की तरफ इशारा है
Yeah, which is the day of the
judgment. कौन सा दिन है खुदावंद का दिन
Yeah, the day of the judgments of God.
वो दिन जो इसमें अदालत होगी खुदा का दिन
So that day will not come but there's going to come a falling away first.
उस वो दिन नहीं आएगा जब तक पहले बरगश्तगी ना हो
And the man of sin must be revealed.
और वो जो हलाकत का फर्जंद है वो जाहिर ना हो
And he has been.
और उसको होना है
By the word.
कलाम के वसीले से
We know who he is.
हम जानते हैं कि वो कौन है
Verse 4.
और चौथी आयत
Who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshipped.
जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या माबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है
So that he as God sits in the temple of God showing himself that he is God.
यहां तक कि वो खुदा के मक्तस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता है
And Brother Bram says, yes, you know, forgiving sins.
ओ जानते हैं आपके जो मुआफी गुनाहों की देता है
Acting like he's God, I forgive your sins.
और वो कहता है खुदा की तरह कि मैं तुम्हारे गुनाहों को मुआफ करता हूँ
Remember you not that when I was yet with you, I told you these things.
क्या तुम नहीं जानते कि जब मैं तुम्हारे साथ था तो मैंने तुम्हें ये बातें बताई थीं?
And now you know what withholdeth that he might be revealed in his time.
अब जो चीज उसे रोक रही है ताकि वो अपने खास वक्त पर जाहिर हो उसको तुम जानते हो.
For the mystery of iniquity does already work.
क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता जाता है.
only he, the Holy Ghost,
magar ab ek, yani Ruhul Quds,
who is now hindering, will hinder,
ke wo rok raha hai aur jab tak wo bedin zahir na ho,
until he, the Holy Ghost and the bride, be taken out of the way,
jab tak ke wo dulhan aur Ruhul Quds raste se hataye na jaye.
Will you get that across?
Yes,
okay.
Yes, yes.
Now, when is the Holy Ghost in the bride taken out of the way?
Ke kab dulhan aur Ruhul Quds us raste se hataye jayenge?
In the rapture.
Rapture mein, uthaye jaane mein.
So our presence on earth,
hamara zameen ke upar ab maujoodgi jo hai,
and the Holy Ghost in us,
aur Ruhul Quds jo hamare andar hai,
is what keeps iniquity from getting even worse.
Ke us badi bedini ko roke hue hai.
We are the thing that stops lawlessness from coming to full maturity.
Hum us bedini ko rok sakte hain, us jo shariat ko todta hai usko rok sakte hain Ruhul Quds ki kudrat.
Not us as a person, but the Holy Ghost in us.
Ek shakhs ke taur par nahi, balki Ruhul Quds ki kudrat.
But when we go, then devil can do what he wants to do.
Jab hum chale jayenge, shaitan jo kuch chahta wo karega.
Verse 8. And then shall that wicked one be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth and destroy with the brightness of his coming.
Kyunki bedini ka bhed to ab bhi taaseer karta jata hai, magar ab ek rokne wala hai, aur jab tak ke wo dur na kiya jayega wo rok ke rahega.
Even him whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders.
Naam yaad palon 8vi nahi padi, aur jiski aamand shaitan ki taaseer ke muafiq har tarah ki jhooti kudrat aur nishano aur ajeeb kaamon ke saath.
Lying wonders, because there's no word in it.
क्योंकि वहां पर कलाम नहीं है और वो झूठ बोलता है.
And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth that they might be saved.
और हलाक होने वालों के लिए नाराजगी के हर तरह के धोखे के साथ होगी, इस वास्ते उन्होंने हक की मोहब्बत को इख्तियार ना किया जिससे उनकी निजात हुई.
We read yesterday what happens to people when they reject truth.
हमने कल पढ़ा कि क्या होगा जब कोई शख्स सच्चाई को रद्द कर देता है.
The prophet said it opens a place for the devil.
और नबी ने कहा कि वो शैतान के लिए जगह खुल जाती है जब कोई सच्चाई को कबूल ही नहीं करता.
We saw in the scriptures that you be turned to your own thinking.
हमने कल गौर किया और सुना कि वो फिर अपने ख्यालात जो हैं उसमें चलते हैं.
Verse 11.
And
for this cause,
और इस वजह से,
they've rejected the truth.
खुदा उनके पास गुमराह करने वाली तासीर को भेजेगा.
God shall send them strong delusion.
और वो झूठ को सच जानेंगे.
That they should believe a lie.
वो झूठ जो होगा उसको सच जान जाएंगे.
Because they've been turned to their own thinking, they can't receive revelation.
क्योंकि वो मुकाशफा को हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि इस सबब से उन्होंने रद्द किया और वो अपने ख्यालात के अंदर चले जाते हैं.
They might be damned who believe not the truth but had pleasure in unrighteousness.
लेकिन जो नाराजगी है उसको वो पसंद करते हैं, नाराजगी को.
Ezekiel 1, and we'll close with this.
हिजकिएल पहला बाब, और उसके साथ हम इसको खत्म करेंगे.
In that picture that I showed you a moment ago,
जो तस्वीर मैंने चंद मिनट पहले आपको दिखाई है,
Brother Branham used that with Ezekiel 1.
भाई ब्रैनम ने इसको हिजकिएल पहले बाब में इस्तेमाल किया.
Excuse me, I put it somewhere and I don't know where.
मैंने किसी जगह रखी है और मुझे पता नहीं कहाँ. ये तस्वीर
Starting at verse 27.
तो 27वीं आयत से पढ़ेंगे.
And I saw as the color of amber, as the appearance of fire round about within.
और मैंने उसकी कमर से लेकर ऊपर तक स्कील किए हुए पीतल का सा रंग और शोला सा जलवा उसे उसके दरमियान और गिरदा गिर्द.
Yes.
And Brother Branham started pointing to this picture when he was reading this.
भाई ब्रैनम इस आयत को जब पढ़ रहे थे तो उन्होंने इस पिक्चर की तरफ इशारा किया, इस तस्वीर की तरफ.
From the appearance of his loins even upward, and the appearance of his loins downward, I saw as it were the appearance of fire, as it had brightness round about.
और गिरदा गिरद देखा और उसकी कमर से लेकर नीचे तक मैंने शोला की सी तजल्ली देखी और उसकी चारों तरफ जगमगाहट थी.
And so he was pointing to the amber and the fire up and down.
और जब वो बता रहे थे कि ये आग जो है ऊपर की तरफ भी जा रही है और नीचे की तरफ भी.
And he says, notice the seven licks of fire.
और गौर करें कि यहाँ पर सात शोले हैं.
He said, see the presence of Christ.
और यहाँ पर मसीह की हजूरी है.
Verse 28.
तो 28वीं आयत.
As the appearance of the bowl that is in the cloud in the day of the rain, so was the appearance of the brightness round about.
और जैसी उस कुमान की सूरत है जो बारिश के दिन बादलों में दिखाई देती है, वैसी ही आस पास की उस जगमगाहट की नमूद थी.
This was the appearance of the likeness of the glory of God.
ये खुदावंद के जलाल का इजहार था.
Excuse me, the glory of the Lord. I'm sorry. And Brother Branham emphasized then, he says, not the Lord, but the glory of the Lord.
भाई ब्रैनम ने कहा कि ये खुदावंद नहीं बल्कि उसके जलाल का इजहार था.
He said this represents the covering over his church because he is in his church.
और ये बात इस बात को जाहिर करती है कि वो ढांप रहा है इसलिए कि वो चर्च के अंदर है, कलीसिया के अंदर है.
Then he said, here's one man standing representing the entire church.
और यहाँ पर एक शख्स खड़ा है जो पूरी कलीसिया की नुमाइंदगी कर रहा है.
And he says, the glory of the Lord covering over his church because he is in his church.
वो खुदा का जलाल उसे ढांपे हुए है और इस सबब से इसलिए कि वो सारी कलीसिया की नुमाइंदगी कर रहा है.
Oh, if we only had eyes to see.
हमारी आंखें हैं देखने के लिए.
Yeah, amen.
Amen.
We'll close with that.
हम इसके साथ खत्म करते हैं.
Now we understand the cherubim.
अब हम क्रोबियों को समझ सके हैं.
He said they're not keeping you from the tree of life anymore.
आपको वो और ज्यादा मजीद उस जिंदगी के दरख्त से रोक नहीं सकते.
He said it's the cherubim in the church trying to drive the people back to the tree of life.
और ये क्रोबी अब लोगों को मसीह की जिंदगी के हयात के दरख्त के पास ला रहे.
Yeah, amen.
Amen.
Great. Lord Jesus.
ऐ खुदावंद यीशु,
we thank you for your word.
हम तेरे कलाम के लिए शुक्रगुजार
हैं.
खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, आंखें दी हैं ताकि हम देख सकें.
We thank you, Lord, that we know you'll continue to unveil yourself until we're finally changed.
ऐ बाप आसमानी, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू अब हमें बता रहा है, लगातार बता रहा है कि जब तक हम तब्दील न हो जाएं.
Then we'll be just like you.
ताकि हम एक वक्त आए कि तेरे
मानस. We look forward to that day.
ऐ खुदावंद, हम उस दिन के मुंतजर और मुश्ताक.
Keep us in the palm of your hand, Lord.
ऐ खुदावंद, अपने हाथ की हथेली में हमें थामे रख.
May we get our lives more totally dedicated to you.
ऐ खुदावंद, ताकि हमारी जिंदगियां और ज्यादा तेरे साथ एक हो जाएं.
May we get out of our lives all the time wasters.
ओ पीछे जो वक्त गुजर गया है उसमें से निकल आए.
That we can focus on serving you.
और इस बात पर अपनी तवज्जो को मबजूल करें कि हमें हमारा एक निशान है यीशु के नाम में.
आमीन. God bless you, brothers.